ओम शांति। आजकल बाबा की रिवाइज मुरलिया सभी सुन रहे हैं, जो अव्यक्तवाणी पहली चली उसको वीडियो के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाणियां मतलब जैसे परीक्षा जब नजदीक आती है तो बच्चों को टीचर पढ़ाता कम है, लेकिन क्या करता है जो IMP इम्पोर्टेंस जो परीक्षा में आने वाली बातें हैं वही बातें उसको बच्चों को बता देते हैं। इसी तरह हमारे भी काफी समय से बाबा पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई का सार जैसे पहली मुरली जो सुनी थी बाबा ने कहा कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जमा का खाता कम दिखाई पड़ता है, उसका कारण बाबा ने कहा था मैपन के कारण जमा नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये कमी है उसको निकालना है, अन्यथा लास्ट में रिजल्ट आएगी तो पता चलेगा हमारा जमा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जो बाबा की मुरली चली उसमें अंडरलाइन कराया था, बच्चे अभी भी गीत गाते हैं, ये ऐसा हुआ क्या करे क्यों करे कैसे करे, बाबा ने कहा समस्याओं का क्या करो समाधान करो, कारणों का क्या करो निवारण करो, सारे बोझ बाप को दो हल्के रहो, इसकी अंडरलाइन कराई थी। और अभी की जो बाबा की मुरली चली बाबा ने कहा अनुभव की क्या बनो अथॉरिटी बनो, अनुभवी मूर्त बनो, केवल चाहे कोई भी पॉइंट्स का अनुभव चाहिए, क्योंकि अंतिम समय का पेपर सेकंड का होगा, इसलिए अब हमें उसी अनुभव के आधार से, क्योंकि जो अनुभवी होगा उसकी अथॉरिटी होगी और उसी के द्वारा उसके संस्कार भी बदलेंगे, क्योंकि जितना हम अनुभवी बनेंगे अनुभव वाला कभी धोखा नहीं खाएगा। अनुभव वालों के पास उमंग उत्साह होता है, कितनी भी परिस्थिति आई कुछ भी आ जाए उमंग उत्साह कम नहीं होगा। बाबा ने उसकी कई निशानी बताई निर्मल वाणी, क्योंकि जो अनुभवी है हर पॉइंट के अनुभव वो लगन में मगन रहेगा, अनुभव वाला किसी औरों को नहीं देखेगा, उस समय को नहीं देखेगा कितना किया उसको नहीं देखेगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप में वो कभी भी थकेगा नहीं, उसके अंदर सत्यु के संस्कार और संस्कृति आएगी। तो अनुभवी बनते बनते हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी, अपना खुद का परिवर्तन होगा, वो पुराने संस्कारों के वश नहीं होगा। अगर कोई संस्कार अपने तरफ खींचते हैं इसका मतलब मुझे अनुभव की कमी है। जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा, इसी तरह जिसने योग का अनुभव किया है आत्मा का अनुभव किया अनुभव वाला कभी भी माया के वश नहीं होगा। अगर माया के वश होते हैं इसका मतलब वो ज्ञान की बातें केवल पॉइंट के रूप में मेरे बुद्धि में है, और जो पॉइंट के रूप में बुद्धि में है वो समय पर धोखा खाएगा, क्योंकि माया ने अभी ऐसे ऐसे साधन बनाए ऐसे ऐसी चीजें बनाया, इतना दिन हम केवल ऐसे ही ज्ञान के आधार से चल रहे होंगे अनुभव नहीं होगा। भगवान ने कहा संस्कार थोड़ा भी अगर अंश है तो वो वंश बन सकता है, थोड़ा थोड़ा करके वो संस्कार पक्के बन जाएंगे। इसीलिए अब मुझे अनुभव की अथॉरिटी बनना है। हर चीज का अनुभव, और सबसे अनुभवी आत्मा को सबसे बड़ा अनुभव कौन सा होगा? आत्मा अनुभव, अनुभव। आत्मा के अनुभव में सारे अनुभव समाये हुए हैं। तो इसलिए कोई एक हमें अनुभव करना है। वास्तव में हम श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, हमारी चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं, इसका रिजल्ट अनुभव। कई कहते हैं हम तो योग खूब लगाते हैं। अगर योग लगाते तो हमें क्या होना चाहिए? अनुभव। कई कहते हैं अभी तक हमने कोई मुरली मिस नहीं किया, रोज ज्ञान सुनते, दो बार मुरली पढ़ते, तो क्या होना चाहिए? अनुभव। कई कहते हमने बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाते, पवित्रता की धारणा पक्की की है। अगर धारणा का सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो क्या होना चाहिए? अनुभव। कई कहते हमने बहुत सेवाएं की है, सेवाएं भी अनुभव। और जो अनुभवी है उसके संस्कार अपने आप, अनुभव है, अनुभवी है, उसका आधार संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, जब हम ज्ञान में आए थे उसी समय जो संस्कार थे वही मेरे अभी भी संस्कार है, इसका मतलब हमने अनुभव नहीं किया। केवल पता है कि दुनिया बदलने वाली है, सत्युग आने वाला है, लोग चल रहे, इसलिए हम भी आ रहे। अगर बीच बीच में धोखा खा रहे, इसलिए अब अनुभव की अथॉरिटी बनना है, और उसके लिए परिवर्तन की शक्ति को प्रयोग में लाना है। उसके लिए अंदर दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता से अपने में परिवर्तन करना है। क्योंकि संस्कार बदलना यह हमारा टोटल पढ़ाई का रिजल्ट है। अगर संस्कार ऐसे हमारे छिपे हुए हैं तो आगे चल करके हमको धोखा देंगे, हमारा पद कम हो जाएगा। इसीलिए संस्कार परिवर्तन, इसीलिए बाबा ने चार सब्जेक्ट रखे हैं, कुछ नियम धारणाएं कायदे कानून रखे हैं, लेकिन ये सब के पर चलते हुए भी संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मुझे योग का गहरा अनुभव नहीं है। क्योंकि जिसको अनुभव होता है उसको सच्चा सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है। ये सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए आत्मा न चाहते हुए भी वो संस्कार के वश हो रहे। जब कभी दुखी हो जाते हैं, कभी अकेले हो जाते हैं, कभी कहीं से धोखा मिल जाता है, तब वो संस्कार के वश हो जाते हैं। जैसे दोपहर से के बाद क्या हुआ, जब आत्मा परेशान होने लगी, टेंशन में आने लगी, तो क्या किया? विकारों का सहारा लिया, और वो सहारा लेते लेते क्षणिक सुख के कारण और नीचे उतरते गए। इसी तरह संगम युग में भी अगर हमें कहीं से अपमान मिलता है, कोई परेशानी आते हैं, तब हम क्या होते हैं? उस जो आधा कलप से वो संस्कारों का सहारा लिया था उसका सहारा ले लेते हैं, क्योंकि अंदर वो उस विकारों के अंश है। वो अंश क्या होते हैं? कोई थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, वो जागृत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, अन्यथा बीच बीच में अगर संस्कार के वश होते रहेंगे, कमाई करेंगे संस्कार के वश होंगे, जो कमाया वो खत्म, कमाते भी रहेंगे और खत्म भी करते रहेंगे, जैसे सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, थोड़ा योग लगाया, थोड़ा ज्ञान सुना, सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़े, थोड़ा संस्कार के वश हो गए, वो सीढ़ी जितनी चढ़ी उतना नीचे। यही संगम युग में करते रहेंगे, संगम युग खत्म हो जाएगा तो बीच में रह जाएंगे कहीं ना कहीं। और संगम युग में हम जो गलतियां करते हैं उसका एक का कितना गुना होता है? बाबा ने कहा कि हम केवल गिनते कौन सा, जो अच्छा करते वही गिनते हैं और खुश हो जाते हैं, मैंने अच्छा अच्छा किया, लेकिन मेरे से विकर्म कितना हो रहे हैं? हम संस्कार के वश होकर के हमारे से एक का कितना गुना बढ़ रहा है उसको हम कभी ध्यान नहीं देते। इसीलिए कई भाई बहने क्या कहते, हम जो पहले ज्ञान में आए थे ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, जैसे बुद्धि को कोई ताला लगा हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कि ना योग लग रहा है ना आनंद आ रहा है। क्यों? जब आए थे बाबा ने बोझ उठा करके नीचे कर दे, हल्के बने, जैसे आगे चलते गए दूसरों को देखना शुरू किया, कोई ना कोई नियम मर्यादा उल्लंघन करना शुरू किया, फिर एक का सौ गुना बढ़ता गया, उसकी गिनती नहीं की, और इसलिए अब अटेंशन। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब क्या करो, परिवर्तन की शक्ति को प्रयोग में ला करके मुझे अब परिवर्तन करना है, क्योंकि समय की तीव्रता सभी देख रहे। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, तीव्र परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए अब हमें औरों को देखना या स्वयं के संस्कार के वश हो जाना ये नहीं, मुझे परिवर्तन होना है। एक्चुअली उसका कारण है हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां भी उसे मिलती रहती हैं, हम कमजोर बन करके इंद्रियां गलत करते हैं, उसकी चेकिंग नहीं करते। इसलिए अब स्वराज्य अधिकारी बन करके मेरे अंदर जो संस्कार पुराने हैं मुझे उसको परिवर्तन करना है। अगर संस्कार के वश होंगे, जैसे महाभारत में भी कई ऐसी बातें दिखाई हैं, जब पांडव की विजय, पांडव जब बड़े हो गए तो लगा कि अभी दोनों में से राजा किसको बनाया जाए, दुर्योधन को राजा बनाया जाए, राजकुमार बनाया जाए या युधिष्ठिर को, तो सभी कहते हैं उसमें जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो उनकी योग्यता कैसी पहचानी जाए? तो अचानक एक दरबार लगाया गया और उसी दरबार में चार लोगों को पकड़ करके लाया, उन चारों के गले बांधे थे। तो सबसे पहले दुर्योधन को प्रश्न पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम इनको क्या सजा देंगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, मारा है उसको। तो दुर्योधन जोर से उठता है, कहता अच्छा मर्डर किया, इसका भी मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। फिर वही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो इनको क्या सजा दी जाए? अगर तुम राजकुमार बनोगे क्या सजा दोगे? तो उठ करके वो गंभीर होता है और कहता है इनकी मैं जाति पूछना चाहता हूं, वर्ण पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है इसका क्या मतलब है? जो उनको लगता है कि हमारे दुर्योधन ने जो बोला वो ठीक है, लेकिन सभी कहते हैं अच्छा पूछते हैं उनका वर्ण बताओ, जाति बताओ। कहता है एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर होता है, कहता है इसमें से जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, उसने गलती की है, मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको आठ नहीं, उनको कहा कि इनको क्या सजा देने वो मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, फिर भी ऐसा काम उसने किया। तो ये जो संगम युग के यादगार शास्त्रों में जो बातें छोटी छोटी लिखी हैं, संगम युग के यादगार है। हम भी क्षुद्र में थे, गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के हम कुछ करते हैं उसको माफ नहीं किया जाता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब हमें ब्राह्मण बनकर के कोई गलती नहीं करनी है। इसीलिए उस परिवर्तन की शक्ति को हमें क्या करना है, प्रयोग में ला करके मुझे अब कोई गलती, अब कईयों को लगता क्या है मुझे किसने नहीं देखा, मैंने तो अकेले में किया है। चलो दो मिनट में हमें ब्राह्मण बनने के बाद परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना है, लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, या हमें अनुभव में हम चाहते सभी अनुभवी मूर्त बन जाए, लेकिन उस अनुभवी मूर्त न बनने का कारण क्या है, संस्कार। संस्कार तो बहुत हैं, लेकिन एक हरेक के अंदर कोई ऐसा संस्कार होता है, वो संस्कार उसके पुरुषार्थ में रोड़ा डालता है, आप बहुत अच्छे प्लान बनाते, आज मैं बहुत ये करूंगा, आज बस आत्मा का अभ्यास करूंगा, आज ये करूंगा, लेकिन वो कड़ा संस्कार वो भी अपना प्लान बनाता है, आज मैं उसको इसी प्लान में कैसे फेल करूंगा, उसके सामने ऐसी बातें लाऊंगा, तो वो संस्कार चेक करो और उस संस्कार को अगर परिवर्तन करेंगे तब हम अनुभवी बन सकते हैं। अनुभव एक हमारी मंजिल है, उस मंजिल में विघ्न करने वाली बातें क्या है, उन बातों को पकड़ो, उससे हमारे संस्कार बदलेंगे। तो चेक करो मेरी बीमारी क्या है, मेरे अंदर के क्या संस्कार हैं। जैसे दुनिया में जिसकी जो बीमारी है वही टैबलेट्स लेता है, इसी तरह हमें भी अनुभवी बनने के लिए, हमें अनुभवी बनने के लिए कौन सी बातें रुकावट आती हैं, उसको हमें इस परिवर्तन के शक्ति के द्वारा परिवर्तन करना है। तो पहले तो चेक करो कि मेरे अंदर का संस्कार क्या है जो मुझे अनुभवी होने नहीं दे रहा है, मेरा सारा टाइम उसी में युद्ध में जाता है, चाहे योग करने के लिए इच्छा है, चाहे आत्मा के स्वरूप में टिकने की इच्छा है, लेकिन वो कौन सा संस्कार है। और हर एक के अंदर कोई ऐसा संस्कार होता है, हमने क्या किया है ज्ञान में आने के बाद ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, लेकिन वो संस्कार अंदर में एक जर्मस के रूप में अंदर है, और जब उस जर्मस को कुछ थोड़ा हवा पानी मिल जाता है वो बड़ा स्वरूप बन जाता है। फिर हम सोचते हैं ये ज्ञान मार्ग में बड़ा कठिन है, इसमें चलना बड़ा कठिन है, इसीलिए फिर हम अनुभव करने के बजाय ऐसे ही पॉइंट स्वरूप में रहते हैं। तो उस संस्कार का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अनुभवी नहीं बन सकेंगे, इसलिए वो संस्कार चेक करना है। और उसके लिए हमें इस ज्ञान मार्ग में कौन सा अनुभव या कौन से बातों का पुरुषार्थ करने से हमें सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि हर एक को कोई आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है, किसी को बिंदुरूप बीजरूप स्थिति अच्छी लगती है, जो वो अनुभव में रहने से वो संस्कार भूल जाता है। तो आपकी कौन सी स्थिति फेवरेट है, क्योंकि कल पहले भी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण पहली बार नहीं बने हैं, 5000 साल पहले भी आप ब्राह्मण बने, आपने पुरुषार्थ किए हैं, आप मंजिल तक पहुंचे हैं, तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था कैसा पता चलेगा? अगर वही पता चलेगा तो हम वही शॉर्ट कर पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो अभी भी इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, कौन सी मुरली में वो पॉइंट आने के बाद आपको लगता है आज बहुत मजे आ गए, आज बहुत अच्छा लगा, किसी ने कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास करने के बाद आपको अच्छा लगता है, वो आपकी वो स्थिति ढूंढो आप खुद, कि मुझे ये स्थिति बड़ी अच्छी लगती है, जब इस स्थिति में मैं रहता हूं मैं निर्विघ्न रहता हूं, मेरे अंदर के संस्कार जागृत नहीं होते, और उस स्थिति के अनुभव के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करना है, और केवल पॉइंट्स ही कलेक्ट नहीं करना है लेकिन वैसे ही चलने का प्रयत्न करना है, एक ही उसी अनुभव के आधार से। लेकिन हम करते क्या है, वो अच्छा लगता है फिर किसी ने कोई और टॉपिक के ऊपर कुछ बोला, हम उसको छोड़ करके वो करने में लग जाते हैं, माना कुएं तो खोदते हैं पानी लगा नहीं लगा उसको छोड़ करके और रास्ते में चले जाते हैं, फिर किसी का और सुना तो 17 कुएं खोदते हैं, इसलिए अनुभव कुछ भी नहीं। इसलिए एक कोई स्थिति के डीप में जाने की जरूरत है, किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना है उसी के पूछो, मुरली जब सुनते हैं उसी स्थिति के बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसी के डीप में जाऊं। जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह हमें भी उस स्थिति के स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। और जब उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो हमारे जो संस्कार है वो ऑटोमेटिकली बदलते जाएंगे। इसलिए बाबा ने खास कहा अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी बनो, और उसी एक अनुभव में सारी चीजें समाई हुई है, और उसी एक अनुभव से इस ज्ञान मार्ग में दृढ़ता से रहेंगे। नहीं तो आगे चल करके अगर अनुभव नहीं होगा कहीं तो अनुभव नहीं होगा तो कहीं छोड़ भी देंगे, कहीं को शंकाएं भी आएगी, कई संशय बुद्धि भी होंगे। जो अनुभवी होगा वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, और उसी अनुभव के आधार से हमारा पद भी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आगे ऐसी परिस्थितियां आने वाली है, इसलिए अब परिस्थितियां नहीं है, बहुत सरल चल रहे, तो इसलिए अब से हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, उससे हमारे संस्कार भी बदलेंगे। लेकिन उस अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए उस संस्कार जो बताया कि हमारे अंदर कोई एक कमजोरी भी होती है, हर एक के अंदर विशेषता भी होते हैं, और बाबा ने उसी विशेषता का कारण हमको चुना हुआ है। बाबा को पता है कि ये आने के बाद मैं उसको इतनी पालना दूंगा, इतना प्यार दूंगा, वो कमजोरी छोड़ देगा। इसी भाव से बाबा को पता है कि इसके अंदर एक कमजोरी भी है, बाबा ने हमारी कमजोरी नहीं देखी, विशेषता देख करके यहां लाया। लेकिन उस कमजोरी का हम कभी कभी ध्यान नहीं देते तो वो बीच बीच में आती रहती, इसलिए उस कमजोरी को परिवर्तन करना है दृढ़ता के द्वारा। तो उस कमजोरी को पहले जैसे कहा कि ढूंढना है कि मेरे अंदर की कमजोरी कौन सी है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, वो सिर दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा। जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हमारे अंदर के जो रावण को मरने की नाभि क्या है, हमारी वो कमजोरी। हम कहते मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, बस वो एक संस्कार मेरा रह गया, वो भी छूट जाएगा। लेकिन जब वो हमारे पर अटैक करता है, जिस जिस बातों को छोड़ा दोबारा रिपीट हो जाती। इसीलिए अब इस वर्ष में, अब 2018 चालू होने वाला है, हमें दृढ़ता के साथ उस संस्कार को परिवर्तन करना है। जैसे भीषम था, भीषम की कमजोरी क्या थी, शकंडी। जब शकंडी आ जाता था उसके पास, वो महारथी था तो भी इसके सारे हथियार कोई काम नहीं करते थे। इसी तरह हमारे हर एक के अंदर भी एक कोई शकंडी संस्कार है। शकंडी मतलब उसने दोपहरिक से लेकर के उस संस्कार को यूज किया, उस संस्कार का उसका कार्मिक अकाउंट है, और उसके कारण वो संस्कार की कुछ वायुमंडल आता है, कुछ बातें आते हैं। हमारे पास ज्ञान है, योग है, सब कुछ है, लेकिन वो काम उस समय नहीं करता, उस समय संस्कार के वश हो जाते। तो ऐसे संस्कार को अब बदलना है, अन्यथा हम अनुभवी नहीं बन सकते। वही संस्कार हमें अनुभवी की अथॉरिटी बनने के लिए विघ्न रूप में है। अगर ये संस्कार को नहीं बदलेंगे, ऐसा ही इसके अंदर कुछ जर्मस रहेंगे, कईयों को क्या लगता है जब विनाश चालू हो जाएगा, उस समय ऐसा ही देख करके हमें वैराग आएगा। लेकिन नहीं, उस समय विकार तो अपना फोर्स और बढ़ाएंगे, विकारों का फोर्स और बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा ही शरीर छोड़ेगी विनाश के समय, लेकिन डायरेक्ट परमधाम में नहीं जाएगी, वायुमंडल में भटकेगी। और जिसके जैसे संस्कार है, उन आत्माओं को तो शरीर तो है ही नहीं, समझो जिसके अंदर काम विकार के संस्कार के अंश हैं, ऐसी आत्मा उसके अंदर प्रवेश करके उसे और इस विकारों को तंग करेगी, फोर्स बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमारे अंदर जिस विकारों के अंश के वंश हैं उसको अब खत्म करो। इसके लिए बाबा ने शायद उसके लिए अलग से भी एक वर्ष ज्वाला स्वरूप योग के बारे में, ज्वाला स्वरूप योग का एक वर्ष रखा था, संस्कार परिवर्तन करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग। क्योंकि जितना ज्वाला स्वरूप योग हम करते हैं, जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है, इसी तरह ज्वाला स्वरूप योग से संस्कारों के अंश के वंश खत्म हो जाते। इसीलिए अब हमें ज्वाला स्वरूप योग से उस संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करना है, अन्यथा यही अंश वंश बन जाएगा, अंतिम समय फेल हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें परिवर्तन की शक्ति को प्रयोग में लाना है, मुझे परिवर्तन करना है। उसके लिए अंदर वही राग, अगर मैं उस संस्कार के वश होता हूं तो क्या होगा। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे गुस्सा करना, गुस्सा दूसरे के ऊपर करना ये खराब है, लेकिन गुस्सा अपने कमजोरी के ऊपर करना ये बहुत अच्छा है। गुस्सा करो किसके ऊपर, जैसे एक बार अर्जुन क्या करता है, रात को उठ करके एक पेड़ के ऊपर क्या करता है, जोर जोर से गुस्से से तीर चलाता है। उस समय कृष्ण पीछे से आता है, कहता हाँ ये पार्थ तुम अपने क्रोध अग्नि को भड़काओ, ये क्रोध अग्नि तुम्हें युद्ध में काम आएगी। क्योंकि वो पेड़ को क्या समझता है, ये दुर्योधन है, अब मैं इसको मार रहा हूं। इसी तरह हमें भी उस संस्कार के बारे में क्या करना है, क्रोध अग्नि को भड़काना है। इसी विकार ने मेरा ताज गवा दिया, इसी विकार ने मेरी राजाई लेके गया, इसी विकार ने मेरे साथ क्या क्या किया, अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे जब अर्जुन जब आता है युद्ध करने के लिए तो मना करता है, ये मेरे भाई है, मैं कैसे इनको मारू, ये मेरा गुरु है, ये मेरा ये है। तब कृष्ण कहता है जिन्होंने तुम्हारे द्रौपदी का चिरारण किया, ये तुम भाई को भाई समझता है उसको, तुम्हारा ये किया। तब जब बातें याद दिलाता है तब उसके अंदर की वो क्रोध अग्नि भड़क जाती है। इसी तरह उस संस्कार को भी परिवर्तन करने के लिए हमारे अंदर उस विकारों ने मेरे साथ क्या क्या किया, जितना ये स्मृति होगी उतना फिर हम संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। अन्यथा ये संस्कार अंतिम समय क्या करेंगे, हमें फेल के लिस्ट में लाएंगे। जैसे पांडव की विजय होती है, पांडव की विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, पांच पांडव द्रौपदी कुत्ता, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, तो भीम पीछे मुड़ करके देखता है द्रौपदी है ही नहीं, तो बहुत उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी तो भी हमारे साथ में नहीं रही, एक रास्ते में वो गिर गई थी, तो उसकी महिमा करता है भीम। उस समय युधिष्ठिर करता है, उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, कौन सी बात, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, सब कुछ छोड़ा लेकिन लगाव नहीं छोड़ा, इसीलिए फेल हो गई। तो वास्तव में ये भी यहाँ की संगम युग की बातें हैं, हमारी विजय होगी हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा, पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, परमधाम सीधा, उसके ऊपर बाबा बैठा है और हमें जाना होगा, लेकिन ये पहाड़ी सीधी है, वही चढ़ सकता है जिसका किसी से लगाव ना हो, कोई पुराने संस्कार ना हो। अगर हमारे कोई पुराने संस्कार आए गिर जाएंगे, चढ़ नहीं सकेंगे, तो उस समय बाबा दिखाएगा, क्योंकि हमने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या किए हैं, ये सब बाबा के पास उसकी रिकॉर्ड है पूरा। बाबा दिखाएगा तुमने ये किया है। उस समय शिर कैसा होगा? नीचे। बाबा कहेगा तुमको तो मैंने ये पद के लिए चुना था, लेकिन तुमने ये भूले की। अभी तो लगता है हमने किया, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब परिवर्तन की शक्ति को यूज करके मुझे अभी क्या करना है, अपने उस संस्कार को परिवर्तन करना है। और वो संस्कार जागृत क्यों होते हैं? उसको कहीं ना कहीं हवा पानी मिल जाता है, और जब हवा पानी मिल जाता है तब वो संस्कार क्या होते हैं? जागृत होते हैं। फिर हम अनुभवी बनने के बजाय उसी संस्कारों में लगे रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसको अब क्या करो, परिवर्तन करो। तो उस संस्कार को बदलने के लिए, संस्कार बदलते नहीं हमारे, संस्कार मर्ज और इमर्ज हो जाते हैं। उस पुराने संस्कारों के वंश के अंश को खत्म करने के लिए जितना हम ज्ञान योग में बिजी रहते हैं उतना उस संस्कार के अंश के वंश मर्ज रहते हैं, इमर्ज नहीं होंगे। थोड़ा फ्री हो गए, इसलिए बाबा कहते बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, कोई ना कोई कार्य में बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार मर्ज रहेंगे। जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे उतना उस संस्कार मर्ज रहेंगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। क्योंकि जब इस स्थिति में रहते हैं हमें एक अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जब ये सुख मिल जाता है संस्कार का सुख फीका लगता है। अगर हमने सवेरे से आत्मिक सुख का अनुभव नहीं किया, इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज आत्मिक स्थिति बनी रहे उसके लिए अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का योग अपने दिनचर्या में शामिल करना है। उसके लिए आलस अलबेला पर नहीं करना है, नहीं तो कहीं को लगता है मैंने बहुत किया है, अब थोड़ा एक दिन मिस हुआ तो क्या हुआ, ट्रेवलिंग करके आए, थोड़ा सही है सेवा करके आए, रात को 11 बजे सोए, तो हम क्या करते हैं अपने आप को मियां मिट्टू बना करके क्या करते हैं, नियम को तोड़ देते हैं। अब नियम को तोड़ा तो देहाभिमान आ गया, देहाभिमान आ गए तो संस्कार क्या हो गए, जागृत हो गए। तो वास्तव में माया क्यों आती है, वो पुराने संस्कार जागृत क्यों होते हैं? बाबा कहते हैं माया मेरी कौन है, बेटी है। तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर, भाई बहन का रिश्ता हो गया। कोई कोई बहन कभी भाई को थप्पड़ भी मारती है, कब मारती है, जब वो बाप का कहना नहीं मानता, अपनी मर्जी से चलता है। तो कभी कभी बहन उसको थप्पड़ मारने के लिए भी कम नहीं करती। अगर भाई पिताजी का रोज मानता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो बहन तो बड़ी खुश हो जाती। इसी तरह माया भी एक हमारी बहन है, लेकिन जब हम रोज अमृतवेला अच्छी तरह अलर्ट होकर के बैठते हैं, रोज मुरली के लिए एक्यूरेट रहते हैं, नियम मर्यादा में चलते हैं, तो माया बहन तो ताली बजा करके खुश रहते हैं, कहते हैं वाह मेरा भैया तो बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। आपके जीवन में कभी भी माया नहीं आएगी जब आप अमृतवेला ठीक ठाक कर रहे, मुरली ठीक ठाक कर रहे, सब कुछ नियम मर्यादा ठीक ठाक है। थोड़ी भी नियम मर्यादा तोड़ी, नियम मर्यादा का कायदे कानून का उल्लंघन किया, माया बहन आकर के थप्पड़ लगाती, पुराना संस्कार जागृत हो जाता है। जिस दिन माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके चेक करो, 3-4 दिन पहले से मेरी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, जरूर मैंने कुछ देख लिया गलत, जरूर मैंने कोई नियम को तोड़ दिया, इसलिए माया बहन ने थप्पड़ लगा दी। तो उस समय हाथ आगे करके माया बहन के सामने प्रतिज्ञा करो, माया बहन सॉरी मैंने ये गलती की थी, आज से मैं कभी भी ये जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। तो माया क्यों आएगी? इसलिए वास्तव में हमारे संस्कार आते हैं नियम को तोड़ने के कारण। कायदे कानून को तोड़ने के कारण। इसलिए कायदे कानून में हमें क्या करना है, पक्के रहना है। इसके लिए हम दूसरों को देख लेते हैं, साधनों के वश हो जाते हैं, इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इसलिए बाबा रोज आपने क्या करता था, अपना दरबार लगाता था, दरबार लगा करके चेक करता था, कहीं मन तो माया के वश नहीं हुआ, कहीं बुद्धि तो माया के वश नहीं हुई। अगर हमारा ही वजीर सेनापति अगर माया से मिला हुआ है, दुश्मन से मिला हुआ है, तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन हम कभी अपने आप को, हमारा वजीर मन भी जाता है, बुद्धि भी जाती है, आंखें भी मिली है, तब तो संस्कार के वश हो गए। इसलिए रोज अपनी चेकिंग करनी है, और रोज जो चेक करता अपने इस किले को मजबूत करता है, वो संस्कार बदल जाएंगे। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरे नगरिया चौपट राजा, टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, जो चाहे हो रहा है, कान भी उसे मिला हुआ है, मुख भी उसे मिला हुआ है, आंखें भी मिली है, मन भी मिला, सब वजीर वगैरह सब मिले हुए। वो संस्कार पक्के बनते जाएंगे। कितना भी साल ज्ञान योग के लिए देंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। और जो संस्कार के वश है, वो राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए इंद्रियों को अपने क्या करना है, इंद्रियों पर राज्य करना है। क्यों इंद्रियों पर राज्य करना है? जब इंद्रियों पर राज्य करेंगे, तब संस्कार बदलेंगे। अगर नौका पानी के ऊपर चलती है, पार कराती है, अगर नौका के अंदर पानी आ जाएगा तो वो डुबा देती है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, अगर जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है, संस्कार के वश हो जाता है, वो कमजोर राज्य है। सामने से कोई आता है, मन करता है बेकार है या अच्छा नहीं है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो हम क्या करें, मन को मन के वश है, मन के वश होकर के अधीन है। ऐसा अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। और वो ऐसा उसको सहारा देते देते मन अपनी मर्जी चलाता है, बुद्धि अपनी मर्जी चलाती है, कान अपनी मर्जी चलाते हैं, वो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। ऐसे अगर हमारे जर्मस अंग अंदर होंगे, तो जो हमारे अंदर छोटे मोटे जो संस्कार है उसको बदल नहीं सकते। इसीलिए रोज हमें हर इंद्रियों को क्या करना है, ऑर्डर देने, तुमने ये क्यों देखा, आखिर तुम्हारा क्या होता। जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली में शांति में तब बैठ सकता है, जब उसका हर स्टेट में सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी गलत काम करता है, उनकी नींद क्या हो जाएगी, फिट जाएगी। इसी तरह मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के आसन पर तब शांति में बैठूंगा, जब मेरी शरीर रूपी देश में हर इंद्रिया अपना आप एक्यूरेट काम करेगी। कान ने कुछ गलत किया, सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई, आत्मा की शांति भंग हो गई। इसीलिए बाबा कहते रोज अपना दरबार लगा दो, रोज इसकी चेकिंग करो, अगर नहीं मानते उसको सजा दो, परिवर्तन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेंस एट होम, अपने घर को परिवर्तन करो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, घर कौन सा, शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वाले अगर सब ज्ञान में चलेंगे, कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, अगर हर इंद्रिय हमारे ज्ञान में चलेगी, तब हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं, तब हमें सहन शक्ति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा सशक्त बन जाएगी। यह है सो परिवर्तन। हम औरों को देखने में लगे हैं, और क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, मेरे घर में क्या हो रहा है। जैसे लोग चंद्रमा पर गए, पड़ोसी कौन है यही पता नहीं है, इसी से हम परमधाम में जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में क्या हो रहा है? बाबा ने ये परिवर्तन किया, ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो आत्मा का पुरुषार्थ किया, दूसरा रोज अपना दरबार लगाया। इसलिए अगर हम अपने आप खुद को देखेंगे तब जाकर के हमारे में परिवर्तन आएगा। इसलिए हर इंद्रियों पर हमारी निगरानी हो, कहां से माया घुस रहे हैं, कहां से वो संस्कार अंदर आ रहे हैं, कहां जर्मस बैठे हैं। अगर मेरा मन भी जाता है, बुद्धि भी जाती है, तो वश होंगे। इसीलिए अब हमें रोज क्या करना है, इस परिवर्तन की शक्ति को मुझे अब परिवर्तन करना है। किसमें? अपने आप में, इस इंद्रियों में परिवर्तन लाना है। रोज उनका चार्ट भी लिख सकते हैं आप कि आज कौन सी इंद्रियों ने मुझे धोखा दिया। कौन सी इंद्रिया माया के वश हो गई? हो गई तो क्यों हो गई? उसको सजा भी देना, अलौकिक सजा, अन्यथा अंतिम समय धोखा खाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे यह परिवर्तन, और तब हमें आत्मा सशक्त बन जाएगी। और जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा अनुभव में, अनुभव अनु मतलब आत्मा, भव मतलब बनना, सबसे बड़ा अनुभव है आत्मा का अनुभव। और आत्मा का अनुभव करने के लिए इंद्रियों को हमें वश करना है। और तब जब आत्मा का अनुभव होता है तो सहज हमारे संस्कार भी परिवर्तन होंगे, हमारे अंदर योग की ज्वाला जली रहेगी। और जितने योग ज्वाला ब्रुकुटी में जलती है, आत्मा का दीपक जलता है, उतना हमारे संस्कार के अंश वो धीरे धीरे खत्म होंगे। और ऐसी आत्मा अनुभव वाली आत्मा लगन में मगन रहती है, वही आत्मा विजयी बनती है। इसलिए अब हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, और उसके लिए संस्कार परिवर्तन। अगर संस्कार के वश होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे, तो वही एक प्रकार के पक्के संस्कार बनेंगे। और एक बार कई बोलते ना, ये भाई ये बहन बहुत अच्छे थे, इसका अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं होता, लेकिन कई बार उस संस्कार के वश हो रहे हैं। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हम छिपाते नहीं, सुनाते हैं। इसी तरह अगर कोई संस्कार के वश हो रहे हैं, हम सीनियर जो भी हमारे सेंटर पर रहते हैं, जो समर्पित है, उनको सुना करके उनसे युक्ति ले सकते हैं। दूसरा बाबा को भी सुनाओ। अमरतुला जब उठते हैं, अगर वो संस्कार के वश बार बार हो रहे हैं, तो बाबा को भी खुले दिल से सुना, बाबा मैंने आज योग भी किया था, मुरली भी सुनी थी, पता नहीं फिर भी वो संस्कार के वश हो गए। बाबा को सुनाएंगे तो आपको मुरली में उसी संस्कार को कैसे बदलना है उसके पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे सर्जन जो आता है वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी सुनाता है, डॉक्टर जी मैंने वो दवाई खाई, परहेज भी किया, फिर भी दो बार चक्कर आई, उल्टी हुआ, तो डॉक्टर लेकर के उसकी दवाई भेजता है। इसी तरह हमें भी उस संस्कार के बारे में सुनाना है। और जब मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते समय भी कौन से संस्कार हमारे अंदर है, उसी संस्कार के पॉइंट इकट्ठे करने हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तब हम उस संस्कार के अंश के वंश को खत्म कर सकेंगे और जो मुख्य जो स्थिति है उसको डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।